समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। जी हाँ, अक्सर अपनी मंजिल तक पहुँचते पहुँचते हम थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं कठिनाइयों से, बाधाओं से। जब सब कुछ बस ठीक होने ही वाला होता है, हम आखिरी सीढ़ी पर चढ़ने ही वाले होते हैं, उससे पहले हम हार जाते हैं। पर क्यों ना आज अंत तक प्रयास करने की कोशिश की जाए। अगर सफलता हाथ ना आए तो कम से कम एक संतुष्टि तो होगी, एक सुकून तो होगा अपनी कोशिशों पर, और खुशी तो मिलेगी अंत तक हिम्मत ना हारने में। इसी के साथ ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूं आकर्षता सिंह, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, अ वेरी वार्म वेलकम लिसनर्स। यू आर ट्यून टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वेल, before your day begins, someone else's duty has already started in a bunker, in a base, in the sky, on the sea. With boots on the ground and a fire in the heart, good morning listeners again. This isn't just another day of the week, it's a day made possible by the dedication and discipline of our soldiers. Our heroes in olive green, navy white and air force blue, and in our daily news magazine program Aaj Savere today, we pause, we salute the brave hearts, the guardians of our nation, to extend our heartfelt thank you to our soldiers. Well, listeners, it's easy to take peace for granted. The sound of a school bell, the calm of morning commute, children playing in the park, it consists of this. But every moment of peace is held up by the fearless hearts who make enormous sacrifices with their unmatched courage, our armed forces, so that we can live peacefully.
Commanders, who are we?
Indian Army, sir.
Indian Army ne ye jang shuru nahi ki thi, but we will bloody hell finish it.
Yes, sir.
How is the Josh?
Hi, sir.
How is the Josh?
Hi, sir.
I said, how is the Josh?
Hi, sir.
Good. Commanders.
Yes, sir.
How is the Josh?
Hi, sir.
How is the Josh?
Hi, sir.
Well, yes, it fills us with enormous Josh here, and the voice, the personality behind this voice is, we're going to talk about it at the end, the ending segment of our program here in Aaj Savere. So stay tuned, listeners.
Hum sainik hain, hame jagat mein kiska dar hai? Rad kshetra hi sada hamara pyara ghar hai, hriday hamara vipul veerta ka aakar hai, aangan sa hai hame bhuvan, prakatit sab par hai. वह कौन कार्य है हम जिसे कर ना सकें पूरा कभी, निज भारतीय बलवीर्य का आओ परिचय दे अभी। जी हाँ श्रोताओं, हमारे सैनिक ऐसा कोई भी कार्य है ही नहीं जिसे पूरा ना कर सके।
इवन आफ्टर दोज लाइंस, इवन आई वांट टू ऐड अप टू दैट जोश हियर आकर्षिता, टू द सोल्जर स्टैंडिंग इन द सन, टू द सेलर बीनीथ द वेव्स, टू द एयरमैन अबव द क्लाउड्स, टू द जवान इन आवर सिटीज, आवर फॉरेस्ट, आवर फ्रंट लाइन्स। The uniform that our soldiers wear doesn't just carry a tricolor. A billion prayers stand behind them. Unwaveringly courageous brave hearts, Army, Navy and Air Force. Well, we see you, we thank you, we remember you today and every day. Thank you for protecting this land. Thank you for your strength, your sacrifice, your silence. You make us proud. Jai Hind, Vande Mataram. Well, yes, with that, let's start our program here. First, we'll give you the latest in national and international news. We'll also provide you Metro City updates and some historical information which is related to this day, that is 16th of May. So let's get started with the headlines first.
सरकार ने तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग फर्म सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है. नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लिया गया है. इस कंपनी के लिए सुरक्षा मंजूरी नवंबर 2022 में बीसीएएस महानिदेशक ने प्रदान की थी. सेलेबी एविएशन दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, कोची और कन्नूर सहित 9 शहरों के हवाई अड्डों पर यात्री सुविधा, उड़ान संचालन, कार्गो और डाक सेवाओं के साथ साथ एयरो ब्रिज और वेयरहाउस सेवाओं का प्रबंधन प्रदान करती है.
Several leading Indian universities have suspended their academic memoranda of understanding MOUs with Turkish institutions, citing national security concerns. The latest to act is Jamia Millia Islamia, which announced the immediate suspension of all MOUs with institutions affiliated with Turkish government. In a social media post, Jamia said it stands firmly with the nation. Adding to the wave of academic disengagement, the Maulana Azad National Urdu University in Hyderabad has also cancelled its academic MOU with the Yunus Emre Institute in Turkey with immediate effect. Earlier, Jawaharlal Nehru University, JNU, also suspended its own MOU with Inonu University in Turkey. The agreement signed earlier this year on February 3 was intended to promote collaborative research and student exchanges. These decisions came amid a broader deterioration in India-Turkey relations spurred by Ankara's strong support for Pakistan and criticism of India's recent strikes on terror camps across the border. Turkey's alignment with Pakistan on key strategic and defense issues has triggered domestic calls in India for the boycott of Turkish products and tourism.
London ki Uchch Nyayalay ne heera karobari Nirav Modi ki zamanat yachika kharij kar di hai. नीरव मोदी वहां की जेल में बंद हैं. वे अपने मामा मेहुल चोकसी के साथ मिलकर 13,000 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित हैं. नीरव मोदी ने कल लंदन की अदालत में अपने प्रत्यर्पण अनुरोध पर फैसला आने तक जमानत पर रिहाई की मांग की थी. सीबीआई ने दिल्ली में एक बयान में कहा कि नीरव मोदी की दायर नई जमानत याचिका को कल किंग्स बेंच डिवीजन लंदन के उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया.
India made a strong presence at the ongoing Cannes Film Festival with the inauguration of the Bharat Pavilion, reaffirming the country's commitment to promoting its cinema on the global stage. The pavilion promotes Indian cinema globally and fosters international collaborations. We have more from our correspondent.
The event saw the presence of renowned personalities, including filmmaker and IFFI Festival director Shekhar Kapoor and veteran actor Anupam Kher. On the occasion, Mr. Shekhar Kapoor spoke on the growing influence of India as a creative powerhouse and the role of cinema in fostering global unity. Actor Anupam Kher, in his address, talked about the journey of Indian cinema and his own development in conjunction with the nation's film industry. The pavilion has been set up by the National Film Development Corporation, NFDC, and the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, FICCI. The event also featured the launch of the IFFI 2025 poster and trailer. Besides, the Indian Film Guide was launched, promoting India's film talent, co-production incentives, and filming locations. The guide is intended to project India as a viable partner for international collaboration. The 78th Cannes Film Festival kicked off on Tuesday with filmmakers, artists, and cinephiles from across the world in attendance. Several Indian actors and filmmakers walked the red carpet on Wednesday, and multiple Indian films were screened as part of the prestigious event. Aishwarya Rainigam, Akashwani News, Delhi.
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है. संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना WESP की छमाही रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा वित्तीय वर्ष में 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है.
संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटरेले ने कहा कि ये वृद्धि निजी क्षेत्रों के उद्यमों में होने वाली खपत और सार्वजनिक निवेश से प्रेरित है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वर्ष 6.4% की दर से बढ़ेगी, हालांकि इसके विपरीत वर्ष वैश्विक वृद्धि दर केवल 2.4% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में मुद्रास्फीति और रोजगार में सकारात्मक बदलाव आने का भी उल्लेख किया गया है। मुद्रास्फीति पिछले वर्ष की तुलना में 4.9% से घटकर मौजूदा वर्ष में 4.3% रहने की संभावना है।
Ukrainian President Volodymyr Zelensky has announced he will not attend the upcoming peace talks with Russia in Istanbul. However, Ukraine will send a delegation led by Defense Minister Rustam Umerov to support efforts toward de-escalation. Speaking in Ankara, President Zelensky reaffirmed Ukraine's commitment to dialogue but expressed doubts about Russia's intentions. He pointed out the absence of key decision makers among Moscow's representatives. U.S. Secretary of State Marco Rubio has also said he would not attend the much-anticipated peace talks. He said no real progress is expected until U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin meet directly. Allow me, listeners, now to provide you sports updates. Well, India had a brilliant day in chess yesterday, along with notable updates from the world of athletics and cricket. We have a report.
Indian Grandmaster Nihal Sarin finished as runner-up at the Asian Chess Championship held in Al Ain in UAE. The top-seeded pair from Kerala defeated Iran's Badia Daneshwar in the final round clash held between the joint overnight leaders. However, Sarin had to settle for silver due to an inferior tie-break score, with both pairs finishing with 7 points from 9 rounds. Despite narrowly missing the title, Nihal secured a spot in the upcoming FIDE Chess World Cup, set to be held in India later this year. In some more chess news, Indian Grandmaster R. Pragyananda ended his run of draws to take sole lead ahead of the final round of the Superbet Classic in Bucharest, Romania. He defeated Filipino-American Grandmaster Wesley So in the 8th round. Pragyananda leads the leaderboard with 5 points. The 9th and final round will be played today. In athletics, India's 2-time Olympic medalist and reigning world champion in javelin throw, Neeraj Chopra, will participate in his first Diamond League meet of the season in Doha, Qatar today. And in women's cricket, BCCI has announced ODI and T20I squads for India's upcoming tour of England, scheduled from June 28 to July 22. Harmanpreet Kaur will lead the women in blue in both formats, with Smriti Mandhana serving as her deputy. Manik Sharma, News Desk.
Well, listeners, as we celebrate the success of Operation Sindoor, the nation salutes the valor of the Indian soldiers. As a tribute to the armed forces, Akashwani News brings in a special series. Today, we remember Paramveer Chakravorty Captain Manoj Kumar Pandey, who made supreme sacrifice during the Kargil War.
Shaan teri kabhi kam na ho.
A resident of Sitapur district in Uttar Pradesh, Captain Manoj Kumar Pandey joined the National Defence Academy and Indian Military Academy and was commissioned as a lieutenant in the 1st Battalion, 11th Gorkha Rifles. Captain Pandey took part in a series of boldly led attacks during Operation Vijay, forcing back the intruders with heavy losses in Batalik, including the capture of Jubar Top. His words, "If death strikes before I prove my blood, I swear I will kill death," was a powerful expression of his unwavering determination and courage. On the night of 2nd and 3rd July 1999, during the advance to Kalubar as his platoon approached its final objective, it came under heavy and intense enemy fire from the surrounding heights. Captain Pandey, fearlessly assaulting the first enemy position, killed 2 enemy personnel and destroyed the second position by killing 2 more. He was injured on shoulder and legs while clearing the third position. Undaunted and without caring for his grievous injuries, he continued to lead the assault on the fourth position, urging his men, and destroyed the same with a grenade, even as he got a fatal burst on his forehead. This singular daredevil act of Captain Pandey provided the critical firm base for the companies, which finally led to the capture of Kalubar. He, however, succumbed to his injuries. Lieutenant Manoj Kumar Pandey showed most conspicuous bravery, indomitable courage, exemplary personal valor, outstanding leadership and devotion to duty of an exceptionally high order in the face of the enemy, and made the supreme sacrifice. He was awarded Paramveer Chakra posthumously. The nation salutes him. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
और आइए अब जानते हैं महानगरों से खबरें। चेन्नई की खबरों के साथ हैं शगुन।
यस आकर्षिता, बिगिनिंग विद चेन्नई। द चेन्नई स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू एड मोर फैसिलिटीज सच एज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी एंड अ लाइब्रेरी एट द गवर्नमेंट फाइन आर्ट्स कॉलेज इन चेन्नई। Covering an area of 53,305 square feet, these facilities will be housed in a four-storied structure to be built at a cost of 21 crore rupees. Tamil Development and Information Minister MP Saminathan and Minister PK Sekar Babu laid the foundation stone for the project. The library will initially have more than 10,000 books on various subjects such as painting, sculpture, visual design communication, industrial design in textiles and printmaking. Established in 1850, this is one of the oldest colleges in Chennai. It offers undergraduate courses and postgraduate courses. Scholarships are given to outstanding students. Free art material is also provided. Placements are facilitated in various roles such as art director, photographer, cinema and graphic artist. Now over to you, Akarshita.
Aur ab khabre Delhi se. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कल राष्ट्रीय राजधानी के 111 गांवों में पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी आपूर्ति का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल श्री सक्सेना ने कहा कि पीएनजी की आपूर्ति महज एक तकनीकी परियोजना नहीं है, बल्कि स्वच्छ और उज्ज्वल भविष्य के लिए एक ठोस आधार है। उन्होंने कहा कि ये पहल न केवल ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती ऊर्जा से जोड़ती है, बल्कि दिल्ली को पर्यावरण के अनुकूल और सतत राजधानी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के सराय कालेखां स्टेशन से जंगपुरा स्टेबलिंग यार्ड को जोड़ने के लिए बारापुला फ्लाईओवर पर 200 टन के स्टील स्पैन को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने बताया कि स्टील स्पैन में 4 स्टील गर्डर्स लगे हैं और प्रत्येक की लंबाई 40 मीटर है। एनसीआरटीसी की टीम ने इस प्रक्रिया को प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और यातायात पुलिस के सहयोग से पूर्ण किया है। दिल्ली मेट्रो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी के साथ कल औपचारिक रूप से एकीकृत हो गया, जिससे यात्री अब विभिन्न निजी एप्स के जरिए मेट्रो टिकट खरीद सकते हैं। इस पहल के माध्यम से दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी की टिकटिंग सेवाएं अब मोबिलिटी ऐप, ट्रैवल प्लेटफॉर्म, यात्रा योजनाकार और यहां तक कि टेलीग्राम बॉट पर भी उपलब्ध है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। उन्होंने संस्थान में भर्ती घायल हुए सुरक्षाकर्मियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। ये सुरक्षाकर्मी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर कर्रे गुट्टा पहाड़ियों में 21 दिन तक चले नक्सल रोधी अभियान में घायल हुए थे।
फोकसिंग नाउ ऑन बेंगलुरु, कर्नाटका हाईकोर्ट हैज डायरेक्टेड द बेंगलुरु सिटी पुलिस नॉट टू फाइल चार्जशीट अगेंस्ट सिंगर सोनू निगम अंटिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ऑन अ केस फाइल्ड फॉर अलेजेडली मेकिंग कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क्स। जस्टिस शिवशंकर अमरनवार पास द इंटरिम ऑर्डर आफ्टर हियरिंग द पिटिशन इन बेंगलुरु यस्टरडे। The court directed the police not to take any coercive steps until the filing of the final report and if the singer cooperates in the investigation. Akarshita, I have one more update for our listeners from Bengaluru. The Bruhat Bengaluru Mahanagarpalike Chief Commissioner M. Maheshwar Rao has issued instructions to officials to remove OFC cables hanging loosely over pedestrian pathways. He was on inspection near the Guttahalli flyover in the city yesterday. He underscored the need to lay the cables underground through the ducting system. He pointed out that all white-topped roads across the city have a ducting system. Mr. Maheshwar Rao directed the officials to locate municipal corporation-owned vacant lands and provide designated places for the street vendors.
Aur ab khabrein Mumbai se. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को खुलेआम समर्थन देने के मद्देनजर कई व्यापारियों और फिल्म संगठनों द्वारा तुर्की और अजरबैजान का बहिष्कार करने के फैसले का स्वागत किया है। वहीं रिजर्व बैंक की केंद्रीय निदेशक मंडल की 615वीं बैठक कल मुंबई में हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य में नगर निकाय चुनाव समय पर और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार होंगे। श्री फडणवीस ने कहा कि सरकार कुछ क्षेत्रों में तेज मॉनसून होने पर निर्वाचन आयोग से 15 से 20 दिनों का विस्तार मांगेगी। और अब कोलकाता से खबरें।
कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के वक्फ अधिनियम से संबंधित हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश दिया है। इस संबंध में आगे की सुनवाई 31 को होगी।
Yes, focusing now on Hyderabad, where earlier we gave you a headline that the Maulana Azad National Urdu University in Hyderabad has announced the cancellation of its academic memorandum of understanding with Yunus Emre Institute, Turkey, with immediate effect. The decision has been taken in protest against Turkey's support for Pakistan's terrorist activities in the backdrop of Indo-Pak tensions. The university had signed an MOU with Yunus Emre Institute, Turkey, in 2024, for a period of 5 years, under which a diploma in Turkish language was started at the School of Languages, Linguistics and Indology. Services of a visiting professor were also hired for this. These are the updates from Metro Cities.
और अब महानगरों के मौसम का हाल। सबसे पहले दिल्ली के मौसम का हाल। आज दिल्ली में दिन के समय तेज हवा चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। वहीं मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बारिश और गरज के साथ तूफान की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहने का अनुमान है। बात करें कोलकाता की तो वहां तेज हवाओं के साथ बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं।
Talking about Chennai now, it is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 28 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have a partly cloudy sky with possibility of development of thunder lightning. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum it will be around 31 degrees. Hyderabad now, it is expected to have a generally cloudy sky with intermittent rain. The temperature will hover between minimum of 20 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius.
और आइए अब जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या-क्या हुआ।
Yes, first talking about International Day of Light. It is celebrated on 16 May each year on the anniversary of the first successful laser surgery in 1960 by physicist and engineer Theodore Maiman. The study of light has led to promising alternative energy sources, life-saving medical advances in diagnostics, technology and treatments. Also, light-speed internet and many other discoveries that have revolutionized society and shaped our understanding of the universe. And the purpose of this day is to encourage scientific collaboration and explore the possibilities of light-based technologies. And now we'll also take you way back in time in the year 1717 first. Writer François-Marie Arouet, better known as Voltaire, was imprisoned in the Bastille. And in the year 1866 now, the US Congress passed legislation that called for the creation of a 5-cent piece composed of nickel and copper. The currency became known as nickel. In the year 1929 now, the first Academy Awards were presented in a ceremony at Hollywood Roosevelt Hotel.
और आज के दिन ही 2006 में हॉलीवुड की चर्चित अदाकारा ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित नाओमी वॉट्स को संयुक्त राष्ट्र संस्था का राजदूत बनाया गया। और अब बात उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों में से एक कर्नल धर्मवीर सिंह की पुण्यतिथि है। सन 1971 में लोंगेवाला की लड़ाई में पाकिस्तान पर भारत की जीत में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 4 दिसंबर 1971 की रात लोंगेवाला चेकपोस्ट पर ज्यादा जवानों की तैनाती नहीं थी। लेफ्टिनेंट धर्मवीर की अगुवाई में वहां पेट्रोलिंग टीम गश्त कर रही थी। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से कुछ हरकतें सुनाई दी। उन्होंने इसकी खबर तुरंत ब्रिगेडियर चांदपुरी को दी। इसके बाद तत्कालीन मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व और लेफ्टिनेंट धर्मवीर की अगुवाई में छोटी सी भारतीय टुकड़ी ने पाकिस्तानी फौज को धूल चटा दी। इसी युद्ध पर वर्ष 1997 में फिल्म बॉर्डर भी बनी थी।
मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा।
Well, now moving on. Today, we are also remembering Joseph Fourier, mathematician known as Egyptologist and administrator also, who exerted strong influence on mathematical physics through his theory Analytique de la Chaleur. Well, it is also translated as the analytical theory of heat. He showed how the conduction of heat in solid bodies may be analyzed in terms of infinite mathematical series, now called by his name, the Fourier series.
एक गहन आत्मविश्वास से भरकर सुबह निकल पड़ता हूँ घर से ताकि सारा दिन आश्वस्त रह सकूँ। एक आदमी से मिलते हुए मुस्कुराता हूँ, वो एकाएक देख लेता है मेरी उदासी। एक से तपाक से हाथ मिलाता हूँ, वो जान लेता है मैं भीतर से अशांत हूँ। एक दोस्त के सामने खामोश बैठ जाता हूँ, वो कहता है तुम दुबले बीमार क्यों दिखते हो। आज हिंदी की आधुनिक कविता के शीर्ष रचनाकारों में से एक मंगलेश डबराल की जयंती है। उन्होंने हिंदी कविता को नए अनुभवों से संपन्न किया है। पहाड़ पर लालटेन उनका पहला संग्रह था जो 1981 में आया, और नए युग में शत्रु सबसे नया संग्रह है जो 2013 में प्रकाशित हुआ। मंगलेश डबराल का सुंदर स्वदेश गद्य उनकी यात्रा डायरी एक बार आयोवा और लेखक की रोटी में देखा जा सकता है। वे अपने समय के सिनेमा, सांस्कृतिक सवालों और संचार माध्यमों के अलावा विश्व की संवेदनशील घटनाओं पर टिप्पणी करते थे। विश्व कविता के उन्होंने कुछ सुनहरे अनुवाद भी किए हैं। और आज अभिनेता विक्की कौशल का जन्मदिन है। विक्की ने 2015 में फिल्म मासी से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और उसके बाद जुबान, मरमर्जियां जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक 2019 की एक बड़ी सफलता थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। विक्की ने राजीव भूत पार्ट 1 और सरदार उधम जैसी फिल्मों में भी काम किया जो सभी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही हैं।
And as we were also in the beginning, also we played his dialogue. So that's what I was referring to, listeners, in the beginning of the program also. Well, moving on, today we are also remembering.
Shagun, unka jo sabse famous dialogue hai, how's the Josh, kya aap sunna chahenge?
Again?
Ji.
Commanders, who are we?
Indian Army, sir.
Indian Army ne ye jang shuru nahi ki thi, but we will bloody hell finish it.
Yes, sir.
How's the Josh?
Hi, sir.
How's the Josh?
Hi, sir.
I said, how's the Josh?
Hi, sir.
Good. Commanders?
Yes, sir.
How's the Josh?
Hi, sir.
How's the Josh?
Hi, sir.
How's the Josh?
Hi, sir.
We also have one.
आप जो मर्जी टॉपिक दो, हमको मिल गई 70-80 लाइनें।
अब कोई फेल नहीं होगा जी।
पूरा पंजाब जाएगा इंग्लैंड। आप बस टॉपिक बोलो।
ओके, मिस्टर सुखी, स्पीक फॉर 2 मिनट्स ऑन ताजमहल आगरा।
सर जी, यू वांट टू टेस्ट माय नॉलेज अबाउट
ताजमहल आगरा
और चेक माय इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। माय नॉलेज अबाउट ताजमहल
आगरा
इज लिमिटेड, बट माय नॉलेज अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज इज अनलिमिटेड। आई अंडरस्टैंड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, कोलन, सेमी कोलन, कॉमा ते फुल स्टॉप।
क्या गजब की एक्टिंग की है विक्की कौशल ने फिल्म डंकी में, और उनके इतने किरदार हैं जी, फिल्मों में किरदार हैं, और जब वो एक सोल्जर के रूप में जो है अपने किरदार निभाते हैं तो हम एकदम जोश से भर जाते हैं। और
यस, ही हैज प्रोवाइडेड वैरायटी ऑफ रोल्स, कॉमिक टाइमिंग आल्सो इज देयर एंड आल्सो पेट्रियोटिक रोल्स एज वेल। टुडे वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग करमश्री जेठाबाई सुमैया, इंडियन एजुकेशनिस्ट हु फाउंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन महाराष्ट्र स्टेट इन हियर in India. He was awarded the Padma Bhushan for his service to society in 2000. Well, the Somaiya Vidya Vihar Educational Campus in Mumbai and several colleges are in his name.
आज प्रसिद्ध कथाकार और साहित्य अकादमी की पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य और साक्षात्कार के संस्थापक संपादक गुलशेर खान शानी की जयंती है। नवभारत टाइम्स में भी उन्होंने कुछ समय काम किया। अनेक भारतीय भाषाओं के अलावा रूसी, लिथुवानी, चेक और अंग्रेजी में भी उनकी रचनाएं अभूतपूर्व रही हैं। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए आकर्षिता और शगुन को कार्यक्रम आज सवेरे यही समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
वेल, थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन। नमस्कार।